दिन भर 19 अप्रैल शुक्रवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। 24 साल के बाद एक मंच पर आए मुलायम मायावती।
अरे मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जाती पिछड़े वर्ग के हैं, अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है।
साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं मालेगांव के पीड़ित?
उसको सजा मिलने वाला टिकट दे रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया,
हमारे जख्म पे नमक मारा जा रहा है।
विवेचना में चर्चा ऊधम सिंह के कारनामे की।
ऊधम सिंह is so close to him that the gun is almost pressing into the jacket fabric and he shoots once. The bullet smashes straight through his rib cage and goes through his heart.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती लगभग ढाई दशक बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। मैनपुरी में हुई चुनावी जनसभा में दोनों नेताओं ने गठबंधन को तो समय की जरूरत बताया ही, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जमकर तारीफ करते भी नजर आए। रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ साठगांठ की थी या नहीं, इस मामले में जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस पर रूस ने प्रतिक्रिया देते हुए किसी भी तरह के सहयोग की बात को खारिज कर दिया है। जांच करने वाले विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट के संदर्भ में रूस ने कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति चुनावों के दौरान रूस के हस्तक्षेप का कोई भी सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि अमेरिका में साल 2016 में हुए चुनावों में किसी भी तरह से रूस की भूमिका रही हो। हमें इस बात का खेद है कि इतने निम्न स्तर वाले सबूतों को आधार बनाया गया और जिससे दोनों देशों का परस्पर विकास प्रभावित हुआ, जो कि पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ये थे रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में चल रहा युद्ध वहां के नागरिकों को व्यापक तौर पर प्रभावित कर रहा है। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब खलीफा हफ्तार के लड़ाकों ने शहर पर कब्जा करने का प्रयास शुरू किया। मिलिशिया समूहों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है जो कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार के साथ संबद्ध है। त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मौजूद नील्स स्कॉट ने बीबीसी को बताया कि दो हफ्तों से लगातार चल रहे इस युद्ध की वजह से दसियों हजार लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। उन्होंने कहा,
30,000 people have been displaced, some moving from one neighborhood to another.
करीब 30,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि वो इस युद्ध की स्थिति से बचे रहें। हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक अभी तक लगभग 80 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच होने वाली सीधी बातचीत को एक बड़ा झटका लगा है। ये मीटिंग अफगानिस्तान में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध की समाप्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। ये शिखर सम्मेलन इस सप्ताह के अंत में दोहा की राजधानी में होने वाला था, लेकिन मध्यस्थता करने वाले समूह के प्रवक्ता का कहना है कि ये बातचीत स्थगित होनी ही थी क्योंकि इस बात पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी कि इसमें कौन कौन हिस्सा लेगा। तालिबान इस शिखर सम्मेलन में सरकार की ओर से बहुत अधिक लोगों के शामिल होने पर विरोध जता चुका है। फ्रांस के गृहमंत्री क्रिस्टोफ कास्टनर ने येलो वेस्ट मूवमेंट को लेकर प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। उनका कहना है कि एक तरफ जबकि पूरा देश पेरिस में नोटरडेम गिरजाघर में हुए हादसे को लेकर दुखी है, ऐसे में ये प्रदर्शन करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि येलो वेस्ट मूवमेंट उग्र रूप न ले, इसके लिए वो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर देंगे। फ्रांस में नवंबर महीने से ही हर शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन ईंधन और दूसरी चीज़ों के बढ़े हुए दामों को लेकर हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलू नाताल प्रांत के एक चर्च में प्रार्थना के लिए जमा हुए लोगों पर चर्च की दीवार गिर गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि तेज बारिश की वजह से दीवार ढह गई। प्रांत की पुलिस ने भी गुरुवार रात आए तेज तूफान को इसकी वजह बताया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। मेरा नाम है संदीप सोनी। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की संयुक्त रैली हुई। लोकसभा की इस सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गठबंधन के उम्मीदवार हैं। 24 साल पहले हुए बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा और बसपा के नेताओं में राजनीतिक दूरी बहुत अधिक बढ़ गई थी, इसलिए यह देखना दिलचस्प था कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जब एक मंच पर आते हैं तो कैसे आते हैं, क्या कहते हैं। सुनिए मैनपुरी से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन होने और फिर कई चुनावी रैलियों के बावजूद यह अंदेशा बना हुआ था कि क्या मैनपुरी में मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर और एक साथ दिखेंगे, और दिखेंगे तो दोनों के हाव भाव क्या होंगे। लेकिन दोनों मंच पर दिखे भी, मिले भी, और दोनों के कार्यकर्ता इसे देखकर खुशी से उछल पड़े। आशंकाएं ये भी थी कि क्या मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी, बावजूद इसके कि 1995 में गेस्ट हाउस कांड का खलनायक वो उन्हें ही मानती हैं। मायावती ने न सिर्फ मुलायम सिंह के लिए वोट मांगा बल्कि उनकी तारीफ भी की और गेस्ट हाउस जैसा कांड भूलने की वजह भी बताई।
देश में आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जाती है पिछड़े वर्ग के हैं, अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं है।
मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा उनका समर्थन कर रही है। मुलायम सिंह यादव पिछली बार भी यहां से जीते थे लेकिन बाद में उन्होंने आजमगढ़ सीट से ही सांसद बने रहने का फैसला किया और ये सीट छोड़ दी। मुलायम सिंह यादव ने समर्थन के लिए बसपा नेता मायावती का आभार जताया।
हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है कि हमारे समर्थक हक्कर में हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस स्थान को कभी नहीं भूलूंगा।
रैली में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला।
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है, ये मां गठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है, और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा।
गठबंधन की संयुक्त रैली में लगे बैनरों और कटआउट्स में राष्ट्रीय लोकदल का भी निशान था और उसके नेता अजीत सिंह की तस्वीरें भी लगी थी, लेकिन अजीत सिंह या फिर RLD का कोई नेता वहां मौजूद नहीं था। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1996 से लेकर अब तक सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि हर बार बड़े अंतर से जीती है। मैनपुरी में 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान है। कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है जबकि बीजेपी से प्रेम सिंह शाक्य मुलायम सिंह यादव को टक्कर दे रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC मैनपुरी।
बीते कुछ दिनों से बीजेपी की एक नेता लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उनका नाम 11 साल पहले महाराष्ट्र के एक शहर में हुए धमाके के मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर दर्ज है। वो फिलहाल जमानत पर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं मालेगांव के पीड़ित, सुनिए हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकरे की इस रिपोर्ट में।
मालेगांव धमाके में लियाकत अली शेख की 10 साल की बेटी फरीन की भी मौत हो गई थी। लियाकत अली शेख कहते हैं,
कुर्ते में बच्ची गई थी टिकिया भजिया लाने, खूब तेज हवा धमाके की, लोग बोले बच्ची भी है उसमें, वाड़िया ले गए, फिर वाड़िया हॉस्पिटल गया मैं, वहाँ पे बच्ची को बोले देखा नहीं दिया मेरे को, महिला ने बोले देखो मत आप, उसको सजा मिलने वाला आप टिकट दे रहे हैं, मुजरिम है, ये तो उल्टा हो गया, उसको टिकट दे रहे हैं, हमको इंसाफ मिलेगा, हमको हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है।
मालेगांव धमाके में 20 साल के अजहर बिलाल भी मारे गए थे। अजहर के पिता निसार अहमद सैयद बिलाल कहते हैं,
हमारे मामले को 11 साल के ऊपर हो गया है, जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसके साथ में हमारे को अभी तक कोई चीज न्याय नहीं मिली है, और उसके बाद में आज गवर्नमेंट उसको इलेक्शन लड़ने के लिए जो टिकट दे रही है, हम इसके मुखालिफ है। वो सजा नहीं देते हुए हमारे जख्म पे नमक मारा जा रहा है और हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है।
बिलाल ने एनआई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि साध्वी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। मालेगांव धमाके के पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वालों में स्थानीय डॉक्टर अखलाक भी शामिल है। डॉक्टर अखलाक कहते हैं,
मालेगांव की आवाम बहुत नाराज है और मालेगांव की आवाम ये चाहती है कि जो ये 2008 में मुलजिमा है और ये बेल पर रिहा हुई है और इन्होंने कोर्ट को धोखा दिया है, कोर्ट को ये कहा है कि बीमारी है, बीमारी का बहाना लेकर इलाज के लिए जो है तो बाहर है, जबकि कोर्ट की तारीख पर वो कोर्ट भी नहीं जा रही है और इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, ये तो हमारे लिए बहुत सोचने की बात है।
पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ अली कहते हैं,
क्योंकि उनको वोट चाहिए, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, और ये साध्वी को जो उन्होंने टिकट दिया है ये हमारे लिए एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाकया है, और बीमारी का बहाना बताकर जमानत होने के बाद में आज लगभग 6 महीने के अंदर इतनी सेहत याब हो गई है कि भोपाल जैसे एक मशहूर शहर में भाजपा ने उनको टिकट का घोषित कर दिया और उम्मीदवारी कर रही है, और ये मैं महात्मा गांधी की हार और नाथूराम गोडसे की जीत मान रहा हूँ इस वाक्य को।
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 की रात हुए धमाके में 6 लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को भी गिरफ्तार किया था। प्रज्ञा सिंह फिलहाल जमानत पे जेल से बाहर है और बीजेपी के टिकट पर भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। प्रवीण ठाकरे मालेगांव से पीबीसी हिंदी के लिए।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ने महाराष्ट्र एटीएस के दिवंगत प्रमुख हेमंत करकरे के बारे में एक विवादित बयान दिया है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता दिव्या आर स्टूडियो में मौजूद हैं।
शुक्रिया संदीप। ये बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में दिया, और हम याद दिला दें कि हेमंत करकरे आतंक निरोधक दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और साल 2008 में मुंबई पर हुए हमलों के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बहादुरी के लिए अशोक चक्र दिया गया था। आज उनके बारे में प्रज्ञा सिंह ने बात करते हुए कहा कि उनकी मौत दरअसल प्रज्ञा सिंह के श्राप की वजह से हुई थी।
तमाम सारे प्रश्न करता था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया।
दरअसल हेमंत करकरे ने साल 2006 में हुए मालेगांव बम धमाके की जांच की थी और इसी दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह से भी पूछताछ की थी। जांच इस नतीजे पर पहुंची कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के तार प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले में प्रज्ञा सिंह अभी भी अभियुक्त हैं, फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। हेमंत करकरे पर उनके बयान पर आज काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
प्रज्ञा ठाकुर ने देश के शहीद, महाराष्ट्र की धरती के एक नौजवान रणबांकुरे, जिसने 26/11 के आतंकवाद में अजमल कसाब को पकड़कर निर्दोष लोगों की जान बचाते और आतंकवाद से लड़ते हुए अपने जान की कुर्बानी दी, आज उसको देशद्रोही करार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा देशद्रोही चेहरा है।
अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी, आईपीएस एसोसिएशन, कई नेताओं ने इनकी निंदा की है, पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इस बयान से अलग कर दिया है।
ये थी बीबीसी संवाददाता दिव्या।
बीबीसी इंडिया पोल।
बम विस्फोट और 6 लोगों के कत्ल की अभियुक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर का चुनाव मैदान में उतरना भारतीय राजनीति के लिए कैसा संकेत है? उन्हें भोपाल से चुनाव मैदान में उतार कर बीजेपी ने क्या संदेश दिया है? क्या बदल रही है बीजेपी की राजनीति? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 20 अप्रैल शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त हो चला है विवेचना का। पिछले हफ्ते आपने सुना किस तरह 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हजारों निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवाई थीं। ऊधम सिंह ने 21 साल के बाद लंदन में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर पर गोली चलाकर इसका बदला लिया। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं ऊधम सिंह के उसी कारनामे को।
मारियो पूजो के लिखे अंग्रेजी उपन्यास द गॉडफादर में एक डायलॉग है, रिवेंज इज ए डिश दैट टेस्ट बेस्ट व्हेन इट इज कोल्ड। मतलब बदला एक ऐसा भोजन है जो सबसे स्वादिष्ट तभी लगता है जब उसे ठंडा करके परोसा जाए। ये जुमला पूरी तरह से ऊधम सिंह पर लागू होता है, जिन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड का बदला लेने के लिए पूरे 21 साल तक इंतजार किया। तब तक जलियांवाला बाग में गोली चलवाने वाले ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो चुकी थी, लेकिन ऊधम सिंह की गोलियों का शिकार बने उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर, जिन्होंने कदम कदम पर उस हत्याकांड को उचित ठहराया था। आम धारणा यह है कि जिस समय जलियांवाला बाग में कत्लेआम हो रहा था, ऊधम सिंह वहां स्वयं मौजूद थे और उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो इस ज्यादती का बदला लेंगे। लेकिन ऊधम सिंह पर बहुचर्चित किताब द पेशेंट असैसिन लिखने वाली बीबीसी की मशहूर प्रेजेंटर अनीता आनंद इससे सहमत नहीं है।
खाली ऊधम सिंह को पता है कि वो कहाँ थे उस दिन। मैंने बहुत कोशिश की ये सब्सटेंशिएट करने के लिए कि वो गार्डन में मौजूद थे कि नहीं थे, और आई कुड नॉट डेफिनेटली से कि वो थे वहाँ गार्डन में। ब्रिटिश लोगों ने बहुत कोशिश की टू सेपरेट ऊधम सिंह फ्रॉम जलियांवाला बाग, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए ऊधम सिंह और जलियांवाला बाग के बीच में। आई थिंक ही वाज इन पंजाब एट द टाइम, आई डोंट थिंक ही वाज इन द गार्डन, पर उन्होंने भेजे थे लोगों को जलियांवाला बाग को। उस वक्त वो लीफलेटिंग कर रहे थे वो नेशनलिस्ट के लिए।
अब ये भी जान लिया जाए कि जलियांवाला बाग के मुख्य सूत्रधारों में से एक माइकल ओ ड्वायर कौन थे और भारत से वापस आने के बाद लंदन में क्या कर रहे थे।
तो माइकल ओड्वायर एक्चुअली बहुत अजीब आदमी थे वो, क्योंकि वो आयरिश कैथोलिक थे और उनकी पैदाइश टिपरेरी में हुई थी। टिपरेरी एक जगह है आयरलैंड में जहाँ पर लोग ने बहुत सफर किए हुए थे अंडर ब्रिटिश रूल। पर ओड्वायर के फैमिली जो थे दे वर वेरी लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। माइकल ओड्वायर हेटेड नेशनलिस्ट, गांधी की नेशनलिज्म थी, he hated it even before he met Gandhi. Na काफी लोग थे जो इंडिया में उन्होंने सर्विस की and they loved India, they loved Indians, they grew to learn the language. Michael O'Dwyer उनमें से नहीं थे। He never trusted Indians. जैसे कोई botanist classify नहीं करते poisonous species को, वो Michael O'Dwyer ने Indians को ऐसे classify किया था अपनी memoirs में कि सिख लोग ऐसे हैं, ब्राह्मण लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लोग ऐसे हैं। He used to just classify them and he had very little respect for any of them. वो ये सोचते थे कि इंडियन लोगों में एक कमी है, एक racial कमी है, and that means they cannot govern themselves. उनमें है ही नहीं ये capability कि they can govern themselves. Michael O'Dwyer ये भी सोचते थे कि ये जो ब्रिटिश राज है, it must stay by any means necessary. It must stay. और अगर इंडिया चली गई ना उनके ग्रास्प से तो पूरी एम्पायर चली जाएगी।
13 मार्च 1940 का दिन जब लंदन जागा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। ऊधम सिंह ने अपने वार्डरोब से सिलेटी रंग का एक सूट निकाला। उनको उस दिन एक ऐसा शख्स दिखना था जो बहुत बोरिंग है, उस तरह का शख्स जिस पर कोई दोबारा नजर नहीं डालता। उन्होंने अपने कोट की ऊपरी जेब में अपना आइडेंटिटी कार्ड रखा जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद सिंह आजाद 8 मॉर्निंगटन टेरेस रेजेंट पार्क। उन्होंने 8 गोलियां निकालकर अपनी पतलून की बाई जेब में डाली और फिर अपने कोट में स्मिथ एंड वर्सन मार्क 2 की रिवॉल्वर रखी। जब वो कैक्सटन हॉल पहुंचे तो किसी ने उनकी तलाशी लेना तो दूर, ये भी गवारा नहीं किया कि देखें कि उनके पास उस आयोजन का निमंत्रण पत्र है भी या नहीं।
ताज्जुब की बात है एक्चुअली दैट सिक्योरिटी इतनी कम थी, एंड स्पेशली जब आप सोचते हैं कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी मौजूद थे उस मीटिंग में। पर उधम सिंह ही प्लान्ड इट सो केयरफुली। पहले तो ही केम इन द लास्ट फ्यू मिनट्स दैट द डोर वाज ओपन, ही वाज वन ऑफ द लास्ट टू कम। He was wearing his hat tipped down over his face. He had a coat over his arm. Aur ye sara pata chalta hai because all of the eyewitnesses who were in the room gave statements, very detailed statements. And usko piece piece karke sticking them together, you can get a very good idea of what happened that day.
Jab 2 baje Caxton Hall ke darwaze khule to minton mein hi wahan ki 130 kursiyan bhar gayi. Michael O'Dwyer ki seat hall mein bilkul aage dahini taraf thi. उधम सिंह पीछे बैठने के बजाय धीरे धीरे चौथी सीट तक पहुंच गए। वो ड्वायर से कुछ ही फिट की दूरी पर थे जो उनकी तरफ पीट करके बैठे हुए थे।
He stood by the side of the hall for the speeches to happen and लोगों ने ये याद किया कि he stood and he was smiling, totally casual, totally cool, just waiting as if he was listening very carefully. पर वो जो अजीब बात थी कि he kept smiling. Inch by inch he kept moving closer to the front of the hall. जब आखिरी स्पीच जब खत्म हुई थी, the people started getting up and getting their bags together. Or Udham Singh just went very slowly, very casually to the front. Jahan ke Michael O'Dwyer, former Lieutenant Governor of Punjab, he was talking to another man, Louis Dane, another Lieutenant Governor of Punjab. Lord Lamington was there. He was speaking to the Secretary of State. Woh pura ek knot tha of men at the front. And Udham Singh walked up to him with his hand outstretched. Or Michael O'Dwyer ne yeh sochte honge ki, oh, he's going to shake my hand. Then he saw the gun. Then he turns around. Udham Singh is so close to him ki the gun is almost pressing into the jacket fabric. And he shoots once. The bullet smashes straight through his ribcage and goes through his heart. The man doesn't have even time to fall before he lets off second round. He pulls the trigger again. Second bullet smashes into him, almost following a parallel trajectory, goes through his heart again. And then Michael O'Dwyer collapses onto the floor and he is dying. You know, there's no hope for him. And then Udham Singh turns his gun onto others in the hall, the Secretary of State, another former Lieutenant Governor of Punjab, a former Governor of Bombay. But his gun is malfunctioning. Bullets jo unhone gun mein dali thi, wo bahut chote the for the compartments of the gun. Or isliye the bullets did not fire with their full force.
जब उधम सिंह ने फायरिंग बंद की, उनकी रिवॉल्वर की नाल गर्म हो चुकी थी। वो रास्ता छोड़ो चिल्लाते हुए हॉल के बाहरी दरवाजे की तरफ भागे।
After he shoots Michael O'Dwyer, he tries to run to the back of the hall. उन्होंने बहुत कोशिश की to get out. But एक औरत बैठी हुई थी just on the side of the audience. उसका नाम था Bertha Herring. काफी बड़ी उम्र में और साइज में काफी हेल्थी थी वो। And she stands up, or usne pure force se, she stood up and threw herself at him and threw him into the wall. He fell down. And after she did that, Bertha Herring, four or five men jumped from the crowd and they'd fall on Udham to keep him on the ground. And when the police come, he's sitting in a chair and he's smiling. Detective Inspector comes and asks him, "Tumhara naam kya hai?" Wo kehta hai, "Mera naam hai Muhammad Singh Azad."
आधे घंटे के अंदर करीब 150 पुलिस वालों ने कैक्सटन हॉल को घेर लिया और वहीं उधम सिंह से सवाल जवाब होने लगे। वहां क्या कुछ हुआ उसका विवरण ब्रिटेन के द नेशनल आर्काइव्स में अभी तक मौजूद है।
जब सर्जेंट जॉन्स के बॉस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डेटन ने कमरे में घुसकर चार इस्तेमाल किए गए कारतूसों को मेज पर रखा तो उधम सिंह का संयम उस शाम पहली बार टूटा। उन्होंने नाराज होकर कहा, नहीं नहीं, मैंने चार नहीं छह गोलियां चलाई थी। डेटन उन गोलियों की तलाश में दोबारा ट्यूडर रूम में गए। उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि एक गोली माइकल ओडवायर के शरीर के अंदर अभी भी धसी हुई है और दूसरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड जेटलैंड के सीने में धसी हुई है। फिर उधम सिंह ने पूछा कि जेटलैंड मरे कि नहीं, मैंने दो गोलियां तो उनके अंदर भी डाली हैं।
जेल में उधम सिंह के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया। वो वहां कई बार भूख हड़ताल पर बैठे। इस बात के प्रमाण हैं कि उन्हें 42 बार फोर्स फीड यानी जबरदस्ती खाना खिलाया गया।
उधम ने पेंसिल और कागज की मांग की ताकि वो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जॉन स्वैन के अफसरों को एक औपचारिक पत्र लिख सकें। उन्होंने इस पत्र में कुछ चीजों की फरमाइश की, जैसे कि मुझे मेरी सिगरेटें भिजवाई जाएं और मेरी एक लंबी आस्तीन की कमीज और भारतीय स्टाइल के जूते भी मुझ तक पहुंचा दिए जाएं। उधम ने यह भी पूछा कि क्या उनके फ्लैट से उनकी सूती पतलून और पगड़ी मंगाई जा सकती है ताकि वो उन्हें जेल में पहन सकें। हैट यानी टोपी मुझे माफिक नहीं लगती क्योंकि मैं भारतीय हूँ। उनकी कोशिश थी कि वो इन चीजों को पहन कर केस को राजनीतिक रंग दे सकें।
मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने ब्रिटिश सरकार की साख गिराने का कोई मौका नहीं चूका। अल्फ्रेड ड्रेपर अपनी किताब अमृतसर द मैसेकर दैट एंडेड द ब्रिटिश राज में लिखते हैं,
जज ने उन्हें आगाह किया कि वो बस ये बताएं कि उन्हें फांसी की सजा क्यों न दी जाए। उधम सिंह ने चिल्लाकर कहा, मौत की सजा की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूं। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उससे शिकायत थी, वो इसका हकदार था, वो मेरे लोगों के हौसले को कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने ही उसे कुचल दिया। मैंने बदला लेने के लिए पूरे 21 साल का इंतजार किया। मैं खुश हूं कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं।
31 जुलाई 1940 को जर्मन विमानों की बमबारी के बीच सुबह 9 बजे उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब उनके ताबूत पर मिट्टी का आखिरी फावड़ा डाला गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने इसके साथ ही उनकी कहानी भी हमेशा के लिए दफन कर दी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 19 जुलाई 1974 को उनके पार्थिव शरीर को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया और एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर भारत लाया गया।
इंदिरा गांधी पर प्रेशर पड़ रहा था कि ब्रिंग आवर बॉय होम, पंजाब से ज्यादातर। उधम सिंह को उन्होंने बैरी किया था एक अननेम्ड अनआइडेंटिफाइड प्लॉट में, खाली कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे एक पीस ऑफ पेपर गवर्नर के ड्रॉ में, और ही वाज जस्ट नेक्स्ट टू मर्डरर्स एंड अ मैन हु हैड बीन हैंग्ड फॉर ट्रीजन एंड नो हेडस्टोन, नो मार्किंग, नो नेम, नथिंग। 74 में इंदिरा गांधी ने कहा ब्रिटिश को कि आई वांट हिम बैक, और सम मिरेकल से, पता नहीं कैसे ये हुआ है, बिकॉज इट वाज सच अ सेंसिटिव टाइम, the British finally agreed to do it and Udham Singh's body was dug up from Pentonville prison and it was flown back to India and it was received as if it was some visiting president from another country. It was taken to Kapoor Tala House in Delhi, the remains, and Indira Gandhi had decided ki ye jo unki jo remains thi, they would tour Punjab for a few weeks taki everybody would have a chance to see him and say goodbye to him. Aur jahan wo cortege, jo funeral cortege, jahan bhi jati thi wo, people would come onto the streets and they would cry and they would throw flowers and they would want to say goodbye in the most emotional way. And Udham Singh, the great sadness is he never saw that, how much love his people had for him.
हड्डियां अपने बुजुर्गों की तेरी खाक में है, तुझसे वो मोड़ के मुँह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छावनी छाएंगे कहाँ।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
चर्चा आईपीएल की। आईपीएल में इस समय आमने सामने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मैदान है कोलकाता का ईडन गार्डन्स। टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्ला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ियों के हाथ में और आईपीएल में बने रहने के लिए कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को तकनीकी रूप से आज का मैच मुकाबला जीतना ही होगा। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती लगभग ढाई दशक बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ साठगांठ की थी या नहीं, इस मामले में जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस पर रूस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी तरह के सहयोग की बात को खारिज किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में चल रहा युद्ध वहां के नागरिकों को व्यापक तौर पर प्रभावित कर रहा है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच होने वाली सीधी बातचीत को एक बड़ा झटका लगा है। ये मीटिंग अफगानिस्तान में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध की समाप्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। फ्रांस के गृह मंत्री क्रिस्टोफ कास्टनर ने येलो वेस्ट मूवमेंट को लेकर प्रदर्शनकारियों की आलोचना की है। उनका कहना है कि एक तरफ जबकि पूरा देश पेरिस में नोटरडाम गिरजाघर में हुए हादसे को लेकर दुखी है, ऐसे में ये प्रदर्शन करना निंदनीय है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।